हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। देखा तुमने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज किया ना, और तुम बेकार में ही इतना डर रही थी। मुझे पहले से ही अपनी बीवी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आदित्य ने अपने सीने पर सर रखकर लेटी हुई सुनैना के माथे पर किस करते हुए कहा। आदित्य के इस तरह किस करने से सुनैना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अपनी तारीफ सुन सुनकर वो अब तक बोर हो चुकी थी, इसलिए एकदम से उठकर बैठती हुई बोली, अरे बस भी करो अब आदी, तुम्हें नहीं पता कितने एफर्ट लगे हैं इतने से इंटरव्यू के लिए, और फिर ऐसे ऐसे सवाल जिनके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे लेकिन तुमने तो सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल किया ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या जवाब देना है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो ऐसा लग रहा है माहिर हो इन सब में। आदित्य भी उठकर उसके सामने बैठता हुआ बोला। उसके ये बात सुनकर सुनैना अपनी शादी से पहले वाली लाइफ के बारे में सोचती हुई बोली, हाँ वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, इसलिए मुझे भी बस आदत है ऐसे बेतुके लोगों को जवाब देने की। तुम्हारी स्टेप मॉम बहुत तकलीफें दी हैं ना उन्होंने तुम्हें? आदित्य ने सुनैना का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछा। सुनैना सब कुछ सोचते हुए इस वक्त थोड़ी सी भावुक थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिसे आदित्य से छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए सुनैना ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, स्टेप मॉम सच कहूँ तो मैंने उस औरत को कभी माँ की नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे और मेरी बहन के लिए उसका बर्ताव कभी भी माँ जैसा नहीं रहा। वो हम लोगों को अपने साथ कंपेयर करती थी हमेशा, और इसीलिए मैं भी उसे गायत्री देवी ही बोलती थी। खैर वो सब इतनी पुरानी बातें हैं, मुझे वो सब कुछ याद नहीं करना। आई नो सोना, मुझे कहीं ना कहीं पता था इन सब के बारे में, लेकिन आई एम सॉरी मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाया उस वक्त, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें ऐसा कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा, आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर प्रॉमिस करते हुए कहा। आदित्य को उसे यकीन दिलाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुनैना को भी पता था कि जब तक वो उसके साथ है उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि आदित्य के उसकी लाइफ में आने के बाद से ही तो उसे खुशियों का असली मतलब पता चला है। सुनैना ने कुछ देर सोचते हुए कहा, आदि वो औरत मेरी सौतेली माँ या जो भी कह लो मेरे लिए बस एक बाहरी इंसान ही है जो कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले पाएगी, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ तो मेरे अपनों ने दी है, मेरे अपने पापा जो कि दूसरी शादी के बाद बदल गए और मेरी माँ को पूरी तरह से भूल गए। तुम्हें पता है आदित्य वो सब मुझे और नैना दी को कितनी तकलीफ देता था, लेकिन मेरे अपने पापा को कभी मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी। ये सब कुछ बोलते हुए सुनैना के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे इस तरह देखकर आदित्य को अपना पास्ट और अपनी लाइफ की बातें याद आ रही थीं, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ वो खुद भी फील कर पा रहा है, लेकिन सुनैना को वो इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था, खासकर वो सब कुछ जो उसने खुद भी फील किया है, इसलिए वो अच्छी तरह से समझ सकता था कि कैसा लगता है जब अपने तकलीफ देते हैं, खासकर जिनसे आप उम्मीद रखते हैं। लेकिन आदित्य ने तो धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे और उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना भी बंद कर दिया था। हाँ ये सारी चीजें उसे शुरू में तकलीफ देती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इन सब की आदत पड़ गई। आदित्य ने अपने आप को एक अलग इंसान बना लिया था, एक पत्थर की तरह, और वो खुद में ही रहता था, लेकिन अभी सुनैना पूरी तरह उसकी लाइफ से जुड़ी हुई है और वो नहीं चाहता था कि सुनैना इन सब बातों के बारे में सोचकर बुरा फील करे, इसलिए आदित्य ने सुनैना को खींचकर अपने गले से लगा लिया और कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसके बाद वो एक हाथ से उसकी पीठ पर हाथ फेर के हुए बोला, सोना प्लीज स्टॉप, आई कांट सी यू लाइक दिस। आदित्य ने भले ही उसे शांत कराने के लिए बोला, लेकिन आदित्य की बाहों में आकर उसके शरीर की गर्माहट मिलते ही सुनैना के मन में दबे हुए सारे जज्बात जैसे एकदम बाहर निकल आए और वो और ज्यादा तेज आवाज में रोने लगी। उसे इस तरह से रोते देखकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और सुनैना को कैसे शांत करवाए, क्योंकि उसे ऐसी सिचुएशन से डील करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कसकर सुनैना को गले लगाए रखा और उसे नहीं छोड़ा। उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरता रहा और सुनैना कुछ देर रोने के बाद शांत हो गई, लेकिन अभी भी सुनैना ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और उसी तरह उसकी आगोश में बैठी हुई थी। इस तरह उसके साथ बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सारा दिन शांत हो गया और इससे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगली सुबह अक्षत ने भी पिछली रात वो इंटरव्यू देखा जिसमें सुनैना ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन के तौर पर सभी के सवालों के जवाब दिए थे। उसे इस बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं पता था, लेकिन जाने से पहले नैना ने उससे कहा था कि वो एक बार जाकर सुनैना और आदित्य से मिलकर आए उसके लिए, और आज अक्षत का डे ऑफ था इसलिए उसने आदित्य सुनैना के घर जाने के लिए सोचा। लेकिन उसके पास उन दोनों में से किसी का भी नंबर नहीं था, इसलिए बिना बताए जाने में थोड़ा सा झिझक रहा था, क्योंकि वो उन दोनों से ही डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। और उसे याद था कि पिछली बार जब नैना के साथ वहाँ पर गया था तो दोनों ही घर पर नहीं थे, इसलिए अक्षत को लगा कि अगर आज भी वहाँ पर पहुँचा और आज फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर नैना उससे कॉल पर पूछेगी तो वो क्या कहेगा। ये सब सोचते हुए अक्षत ने अपने आप से कहा, क्या अक्षत, तू भी नैना से उन लोगों का नंबर तो ले लेता कम से कम, बस ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया हवा में। अब जाने की बारी आई तो सब कुछ समझ में आ रहा है रियलिटी। इतना बोलते हुए अक्षत ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। तभी उसे याद आया कि वो अभी भी तो नैना से कॉल करके उनका नंबर मांग सकता है, या फिर उससे ही कॉल करके पूछने के लिए कह सकता है। ये सोचकर उसने नैना का नंबर डायल किया, लेकिन नैना का नंबर नहीं लगा और वो समझ गया कि जरूर शूटिंग लोकेशन पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कई बार आउटडोर शूटिंग पर जा चुका है और बाहर के एरियाज में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। शिट यार, नैना का नंबर भी नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, आज वैसे भी डे ऑफ है, कोई शूटिंग नहीं है, तो जाकर देख ही लेते हैं। आई होप उन दोनों में से कोई तो घर पर मिल जाए जिससे मैं देखकर तसल्ली कर लूं कि उनके भी सब ठीक है या नहीं, और फिर नैना को इन्फॉर्म कर दूंगा। इतना बोलते हुए अक्षत उठा और रेडी होने के लिए चला गया। वो रेडी होकर आया तो हॉल में उसके असिस्टेंट ने उसे देखकर कहा, सर आज आपकी मूवी की शूटिंग नहीं है, क्योंकि सेट में कुछ चेंज करने हैं, इस वजह से डायरेक्टर ने आज सभी को एक दिन का ऑफ दिया है और कल से शूटिंग कंटिन्यू होगी, फिर भी आप सेट पर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अरे नहीं, मुझे भी इस बारे में मैसेज आ गया था और मुझे पता है आज शूटिंग नहीं है, इसलिए मैं कहीं और जा रहा हूँ। अक्षत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अजय भी उसके पीछे आते हुए बोला, कहीं और कहाँ जा रहे हैं सर, किसी राइटर डायरेक्टर से मिलने किसी नई मूवी के लिए या फिर कोई प्रमोशनल इवेंट है, मुझे इस बारे में नहीं पता। अरे नहीं, किसी काम से नहीं जा रहा हूँ, और तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे पर्सनली कहीं जाना है अकेले ही, अक्षत पीछे मुड़कर अजय की तरफ देखते हुए कहा। तो अक्षत की बात सुनकर अजय वहाँ पर ही रुक गया
और वो कुछ सोचते हुए बोला, बट सर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आने वाली बात जब से मीडिया में लीक हुई है तब से कुछ सरफिरे पागलपन इस बात से नाराज़ हैं, इसलिए कम से कम आप दो बॉडीगार्ड तो साथ में लेकर जाइए, और ड्राइवर मैं भी चलता हूँ साथ में, क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सनल काम में, हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे नहीं, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम फालतू में बात का बतंगड़ बनाते हो अजय, सब ठीक है और मैं सेफली जाकर वापस आ जाऊंगा, बस यही थोड़ी दूर ही जाना है। अक्षत थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, क्योंकि 24 घंटे की सिक्योरिटी असिस्टेंट और ड्राइवर के साथ वो भी इरिटेट हो जाता है, भले ही वो बड़ा सेलिब्रिटी और जाना माना एक्टर है, लेकिन हर वक्त ये सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बट सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अजय ने फिर से उसकी फिक्र करते हुए कहा। तो अक्षत उसकी बात काटते हुए बोला, नो इफ नो बट, और तुम यहाँ पर ही रुको और मैं बस 2-3 घंटे में ही वापस आ जाऊँगा, इसके अलावा मेरा मोबाइल फोन ऑन है, तुम चाहो तो कॉल करके मुझे चेक कर सकते हो या फिर लोकेशन ट्रेस कर लेना, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ वेल। अक्षत ने अजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे कन्विंस करते हुए कहा। तो आखिरकार अजय भी कन्विंस हो गया और उसने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए सिर्फ ओके कहा, और अक्षत मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। आज कई दिनों बाद वो खुद ही ड्राइव करके कहीं जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी है। क्रमशः